الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، देखो आज चौथी मजलिस है। आज का उन्वान है इस्लाहे बातिन का तरीका। इस्लाहे बातिन का तरीका, इस्लाहे आमाल व इस्लाहे बातिन का तरीका। फरमाया आमाल की इस्लाह और बातिन की इस्लाह का तरीका यह है कि नफ्स के जज्बात की मुखालिफत की जाए, नफ्स के जज्बात की मुखालिफत की जाए और उसको मशक्कत का आदि बनाया जाए। तो आमाल की इस्लाह से मुराद है आमाले जाहिरा की इस्लाह, यानी वो आमाल जो जाहिरी आजा से सरजद होते हैं, जैसे नमाज, रोजा, जकात, हज, या आमाले जाहिरा। और बातिन की इस्लाह से मुराद बातिन के वो आमाल है जो इंसान के दिल से सरजद होते हैं, जैसे सब्र, शुक्र, तवक्कुल, तवाजु वगैरह। तो इस्लाह आमाले जाहिरा के भी करनी है और आमाले बातिना की भी करनी है। हजरत वाला फरमाते हैं कि चाहे आमाले जाहिरा की इस्लाह का मामला हो या बातिन की इस्लाह का मामला हो, दोनों का तरीका यह है कि नफ्स के जज्बात की मुखालिफत की जाए, नफ्स के जज्बात की मुखालिफत की जाए। जी नफ्स के जज्बात की मुखालिफत की जाए। दिल में जो गलत जज्बा और गलत दाइया पैदा हो रहा है, जबरदस्ती उसकी मुखालिफत की जाए और उसको मशक्कत का आदि बनाया जाए। शेख का एक नजर डालना। लोग समझते हैं कि जब किसी अल्लाह वाले के पास आदमी जाता है या किसी शेख की खिदमत में हाजिरी देता है और उसे इस्लाही ताल्लुक कायम करता है और उससे बैत होता है तो वो अपनी नजर से काम बना देते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह वालों के पास जाते हैं, नजर पड़ेगी, हमने शेख से ताल्लुक कायम हो गया, बैत हो गए, तो अब हमें बदलना चाहिए। शेख ने एक नजर डाल दी तो बस दिल की दुनिया बदल गई। तो समझ लो, खूब समझ लो कि इस्लाह नफ्स के लिए ये कोई मामूल का तरीका नहीं। लिहाजा ये नहीं होगा कि कोई अल्लाह वाला नजर डाल देगा तो तुम्हारी तबीयत बदल जाएगी और तुम्हारे हालात में खुद ब खुद इनकलाब आ जाएगा, बल्कि करना तो खुद ही पड़ेगा, हिम्मत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, मशक्कत उठानी होगी। शेख का काम सिर्फ इतना है कि वो तवज्जो दिलाते और रास्ता बता दे। शेख का काम क्या है कि वो तवज्जो दिला दे, रास्ता बता दे, बता दे, ऐसी तदबीर बता दे जिसके जरिए काम निस्बतन आसान हो जाए। जी लेकिन करना खुद ही पड़ेगा, चलना खुद ही पड़ेगा। कोई शख्स ये सोचे कि मुझे खुद कुछ करना न पड़े बल्कि दूसरा आदमी मुझे मंजिल तक पहुंचा दे, तो ये बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अंबियाई किराम अलैहिस्सलाम को इशाते दिन के लिए मुजाहदात और मशक्कत उठाने की जरूरत न होती, बस लोगों पर एक नजर डाल देते और सब लोग मुसलमान हो जाते। अगर ऐसा होता तो नबी भी नजर डाल देते मुसलमान, लेकिन मशक्कत उठानी पड़ेगी। इसलिए याद रखे, उसको तो सालिक को चलना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने ऐसा मामला नहीं किया, क्योंकि हर इंसान को जजा और सजा उसके अपने अमल पर दी जाएगी। जजा बदला, सजा उसके अपने अमल पर दी जाएगी। लिहाजा अमल तो उसी को करना है और अमल करने के लिए हिम्मत चाहिए, अज्म और इरादा, पुख्ता इरादा चाहिए कि चाहे इस रास्ते में कितनी भी मशक्कत हो फिर भी काम करूंगा। लिहाजा आमाल की इस्लाह और बातिन की इस्लाह के लिए भी जरूरी है कि खुद हिम्मत करे और दिल में जो गलत जज्बात पैदा हो रहे हैं उनकी मुखालिफत करे। اور ہمت کر کے ان کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو اس مشقت اٹھانے کا عادی بنا دیں. اپنے آپ کو مشقت اٹھانے کا عادی بنا دیں. جی حاصل تصوف, تصوف کا حاصل سمجھو. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بہت کثرت سے نقل فرمایا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ملفوظ پورے تصوف اور طریقت کا عطر اور خلاصہ ہے. وہ ملفوظ جو ہے پورے تصوف اور طریقت کا عطر اور خلاصہ ہے. فرماتے تھے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے, وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے ادا کرنے میں سستی ہو, جب کسی طاعت کے ادا کرنے میں یعنی عبادت کے ادا کرنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے, اور جب کسی گناہ سے بچنے میں نفس سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے. یہ تصوف کا خلا, تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے ترقی کرتا ہے اور اسی سے تعلق باقی رہتا ہے. اب دیکھا, کیونکہ نفس کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا. تصوف کا خلاصہ نفس کا مقابلہ ہے. تو یہ ہوا نا کہ جو طاعت میں سستی ہوتی ہے اس سستی کا مقابلہ کر کے طاعت کو پورا کرے, جو گناہ سے بچنے میں سستی ہوتی ہے اس کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے. فرمایا یہی ہے تصوف کا خلاصہ, اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے ترقی ہوتی ہے. یہ وہ بات ہے جو ایک مجدد تصوف اور طریقت, جس نے اس طریق کے سارے دفتر چھان مارے, جس نے طریقت کے یعنی ساری کتابیں انہوں نے دیکھ لی, اس راستے کی کھانک چھانی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ سستی کا مقابلہ کرو. بس سارے تصوف کا حاصل کیا ہے؟ اللہ. بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے, اور لوگوں نے کچھ اور سمجھنا ہے. نفس کا مقابلہ کرنا ہے. فرمایا مقابلہ کرنا, مثلا نماز پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ, گھر میں ہی نماز پڑھ لوں یا نماز کی چھٹی کر لوں. اب اس سستی کا علاج سوائے چستی کے اور کچھ نہیں. لہذا سستی کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہمت دی ہے اس کو استعمال کرو. جب ہمت کو استعمال کرو گے تو سستی زائل ہوگی, اگر ہمت کو استعمال نہیں کرو گے تو یہ سستی تمہارے اوپر اور قبضہ جما لے گی. سستی کیا کرے گی؟ اور قبضہ جما لے گی. کیونکہ اس سستی کا حال یہ ہے کہ تم جتنا اس کے سامنے ہتھیار ڈالو گے یہ اتنی ہی تمہارے اوپر قابو پائے گی. سستی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جتنا اس کے سامنے جھکو گے وہ اتنی قابو پائے گی. وہ ہمت مراقبے سے آئے گی, وہ ہمت جو ہے وہ مراقبے سے آئے گی. ذکر و اذکار اس ہمت کو لانے کے لیے ہے, اسی لیے یہ درس اس ہمت کو لانے کے لیے ہے, وہ صحبت اس ہمت کو لانے کے لیے ہے, اور وہ تعلق یعنی وہ ربط رکھنا, حالات کا سنانا یہ ہمت لانے کے لیے ہے. اتباع اور اطلاع ہمت لانے کے لیے ہے, ورنہ وہ نہ ہوگی تو پھر ہمت تو بالکل نہیں آ سکتی. تو سستی تمہارے اوپر اور قبضہ جماتے چلے جائے, کیونکہ اس سستی کا حال یہ ہے کہ تم جتنا اس کے سامنے ہتھیار ڈالو گی اتنی ہی تمہارے اوپر قابو پائے گی. آج تم اسے ایک فرض چھڑایا کل کو دوسرا فرض چھڑائے گی, آج ایک گناہ کرایا کل کو دوسرا گناہ کرا دے گی. اور اگر تم اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا یہ یا مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے, تو پھر یہ سستی کمزور پڑتی چلی جائے گی. جی انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. یہ جو نفس, علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدے بردان میں کیا خوبصورت بات فرمائی, فرمایا النفس کالطفل ان تحمل ہو شب علی حب الرضاعی و ان تفتم ہو ينفتم. یعنی انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے، اگر تم بچے کو دودھ پلاتے رہو گے اور کبھی نہیں چھڑاؤ گے تو بچہ جوان ہو جائے گا، دودھ پیتا رہے گا، لیکن اگر ایک مرحلے پر، ایک پوائنٹ پر آ کر تم یہ محسوس کرو کہ اب دودھ پلانا اس کے لیے مضر ہے، اسے چھڑا دینا چاہیے، تو اس وقت دودھ چھڑانے کے لیے تھوڑی سی دقت اور مشقت ضرور ہوگی، وہ بچہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، راتوں کو خود جاگے گا، تمہیں بھی جگائے گا، لیکن بالآخر وہ دودھ چھوڑ ہی دے گا. اگر تم اس مشقت سے گھبرا گئے اور کہا کہ بچے کو دودھ چھڑانا تو بہت مشکل ہے، یہ رات کو خود بھی نہیں سوئے گا اور مجھے بھی نہیں سونے دے گا، چلو دودھ پلاتے رہو، تو اس صورت میں وہ بچہ جوان ہو جائے گا لیکن اس کی دودھ پینے کی عادت نہیں جائے گی. جی انہوں نے فرمایا کہ انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے، اگر تم بچے کو دودھ پلاتے رہو گے اور کبھی نہیں چھڑاؤ گے تو بچہ جوان ہو جائے گا، دودھ پیتا رہے گا، نہیں چھوڑے گا، لیکن ایک جگہ پر جا کر تم اس کو چھڑا دو گے تو وہ چھوڑ دے گا. اسی طرح تمہارا نفس بھی بچے کی طرح ہے، اس کو تو گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے نا، ہر کام کو بے وقت کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے اور ہمیشہ وعدہ خلاف کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے، کہ یہ کام کا وعدہ دیا اور اس کے وعدے خلاف ہی کرنا، تو یہ عادت لگی ہوئی ہے گناہ کرنے کی، تو اس کو تو مصیبتوں اور نافرمانیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ نافرمانی کرے، گناہ کرے اور طاعت سے بچے. اب اگر تم نے اس کو اسی معصیت اور گناہوں پر لگائے رکھا اور کہا کہ چل تو گناہ کا دودھ پیتا رہے، تو یہ نفس کبھی بھی گناہ نہیں چھوڑے گا، گناہ کا دودھ پیتا رہے تو نفس کبھی بھی دودھ نہیں چھوڑے گا، گناہ نہیں چھوڑے گا تو نفس کبھی بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. اور اگر کبھی تم نے اس سے گناہ چھڑانا چاہا تو اس وقت مشقت ضرور ہوگی، لیکن بالآخر وہ گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا اور گناہ چھوڑ دے گا. بس اس نفس کو تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تھوڑی سی مشقت اور مشق کرانے کی دیر ہے. یہ علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب پیغام ہے، اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل بھی یہی ہے کہ سستی کا مقابلہ کر کے آدمی طاعت کو کرے اور سستی کا مقابلہ کر کے معصیت سے بچے. یعنی اعمال ظاہرہ طاعت کو کرنا، اعمال باطنہ معصیت سے بچنا. ہمت بڑی چیز ہے، اس لیے دیکھو ہمت کرنا پڑے گا، آج ہم ہمت نہیں کر پاتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سستی پیدا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک اور چیز پیدا فرمائی، وہ ہے ہمت. یہ ہمت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور اس کی مثال ربڑ ہے. اگر ربڑ کو تم کھینچو گے تو وہ کھینچتی چلی جائے گی، اسی طرح انسان کے اندر جو ہمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے ہمت کو کہ اس کو جتنا چاہو کھینچ لو اور اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ جاؤ. اس دنیا کے اندر جس شخص نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسی ہمت کی بنیاد پر انجام دیا ہے، چاہے وہ دنیا کا کارنامہ ہو یا دین کا ہو، چاہے وہ فضول اور لغو کارنامہ ہو. فضولیات اور لغویات کے کارنامے بھی ہمت ہی سے انجام پاتے ہیں، اور ہمت بہت بڑی چیز ہے. امریکہ میں ایک مشہور آبشار ہے، آبشار کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آبشار، وہ جو اوپر سے پانی گرتا ہے نا، نہیں نہیں اوپر سے جو پانی گرتا ہے، نہیں نہیں سمجھتے، چلو خیر، نیاگرا، نیاگرا واٹر فاؤنشن، پتا نہیں اس کو کیا بولتے ہیں. ہاں تو وہ جو بھی اوپر سے جو پانی گرتا ہے اس کو، ایک امریکہ میں اس کا نام ہے نیاگرا، دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہے. ایک مرتبہ میرا وہاں جانے کا اتفاق ہوا، واٹر فال، तो एक साहब ने वहां पर एक किताबचा लाकर दिया। इस किताबचे में इस आबशार के तारीखी वाकयात लिखे थे, यानी छोटी सी एक किताब ला कर दी। तो उस किताब के अंदर ये जो आबशार की तारीखी उसकी हिस्ट्री के वाकयात लिखे थे कि इस नयाग्रा आबशार पर क्या क्या अजाइब और गराइब पेश आए हैं, और लोगों ने यहाँ क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, और क्या क्या मुहिम जुइया की है, क्या क्या काम किए। इस आबशार में पूरा दरिया ऊपर से नीचे बड़ी कुव्वत से गिरता है, पूरा दरिया जो है एक लेवल से चलता है और वहां पर आकर पूरा नीचे हो जाता है। कभी एक बड़ी अजीबोगरीब चीज होगी, तो दरिया समंदर जिसको कहते हैं, तो अब वो पूरा का पूरा नीचे आकर गिरता है, बड़ी कुव्वत से गिरता है। चुनाचे इस किताबचे में, इस किताब में लिखा था कि किन किन लोगों ने यहां ये कारनामे अंजाम दिया, कि वो एक रबड़ की कश्ती में बैठे, रबड़ की कश्ती में बैठे और आबशार के धाने पर कश्ती लाकर कश्ती समेत इस आबशार के जरिए नीचे गिरते थे। चुनाचे उसमें लोगों के मुकाबले हुए कि कौन जल्दी गिरता है और कौन देर लगाता। इसके नतीजे में बहुत से लोगों की जानें चली गई, और उसके जरिए रिकॉर्ड कायम किया करना था कि हम नियाग्रा आबशार के साथ साथ अपनी कश्ती को गिरा कर ले गए। देखो कैसे कैसे बहुत से लोगों ने यहां ये मुकाबला किया कि इस आबशार की चौड़ाई में रस्सा बांधा, चौड़ाई में, और फिर इस रस्से पर चलकर इस आबशार को उबुर कर रहे हैं। चुनांचे बहुत से लोगों ने उबुर करने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में गिर पड़े और गिरने के नतीजे में जिस्म के टुकड़े हो गए, क्योंकि जिस रफ्तार से पानी ऊपर से नीचे गिरता है उसमें अगर कोई जानदार आकर गिरे तो उसकी हड्डी पसली मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा चुनांचे कोशिश के नतीजे में बाज लोगों ने उबुर कर लिया और अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसके बाद फिर एक शख्स ने कहा कि फुला आदमी ने तो उसको तनहा उबुर किया, मैं एक आदमी को अपने ऊपर बिठाकर रस्से पर चलकर इस आबशार को उबुर करता हूं। चुनाचे उसने एक अंधे आदमी को सर पर बिठाकर इस रस्से के जरिए इस आबशार को उबुर किया। अब देखो कितना बारीक काम है, कितना मुजाहदा वाला काम है, लेकिन आदमी एक तो खुद करे और एक आदमी को बिठाकर करे, तो उबुर कर अपना रिकॉर्ड कायम किया, और दुनिया की तारीख में आज तक उसका नाम लिखा हुआ है कि फुला शख्स ने इस तरह इस आबशार को उबुर किया। अब बताइए क्या आप ये काम कर सकते हैं, नियाग्रा आबशार क्या एक छोटे से नाले पर रस्सी बांधकर उसको पार करने की कोशिश करे? आपसे नहीं बनेगा, लेकिन जब एक शख्स ने हिम्मत कर ली कि मुझे ये काम करना है, इरादा कर लिया कि मैं काम करूंगा, तो उसने कर लिया। अल्लाह ताला ने इस हिम्मत में ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि काफिर, गैर मुस्लिम और अल्लाह को न मानने वाला भी जब किसी काम को करने की हिम्मत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिम्मत में भी बरकत अता फरमा देते हैं और उसको रस्से पर चलाकर उसका रिकॉर्ड कायम करा देते हैं। तो हिम्मत को समझाने के लिए देखो, इतनी बड़ी हिम्मत कि जान को खतरे में डालकर चलना, क्या रिकॉर्ड कायम हो जाएगा? तो यहां पर तो जान को खतरे में डालना नहीं, तो थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो हमारे अंदर इसलाह हो जाएगी और नफ्स काबू में आ जाएगा, गुनाह छूट जाएंगे। तो जब अल्लाह ताला एक काफिर की हिम्मत में ये बरकत अता फरमा देते हैं, तो एक साहिब ईमान जब अल्लाह ताला की इताअत के लिए और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने के लिए हिम्मत करे, तो क्या अल्लाह ताला से वो बरकत नहीं देगा? इस हिम्मत को अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत अता फरमाई है कि उसके जरिए बड़े बड़े मारके सर करा देते हैं। बस अजम करने की, यानी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत लेता है इंसान हिम्मत से, बस इरादा करने की देर है। दरअसल होता यह है कि इंसान बेहिम्मती और सुस्ती के आगे हथियार डाल देता है। इस वक्त में क्या इंसान के अंदर सुस्ती ज्यादा हो जाती है, तो सुस्ती के आगे हथियार डाल देता है और फिर यह समझता है कि मैं बेबस हो गया। लेकिन शरीयत का कहना यह है कि तुम किसी के आगे बेबस नहीं हो। कुरान करीम का इरशाद है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लिहाजा जिन कामों का तुम्हें हुक्म दिया गया है वो तुम्हारी वुसअत में है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है और तुमको हुक्म दिया गया, वुसअत में है, बस हिम्मत करने की देर है। इसलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारे तसव्वुफ का खुलासा यह है कि हिम्मत करके सुस्ती का मुकाबला करे और ताआत को अंजाम दे और मासियत से बचे। पूरी जिंदगी इस काम में गुजारनी है, اگر کسی وقت پھسل جاؤ تو پھر سے ہمت کو تازہ کر لو. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح چلنا سیکھتا ہے. جب پہلی مرتبہ وہ چلنا چاہتا ہے تو ایک دم چلتا ہے, پھر گر پڑتا. اب اگر وہ بچہ گرنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ چلنا میرے بس میں نہیں ہے, تو کبھی اس کو چلنا نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ دوبارہ چلے گا, پھر گرے گا, اور پھر گر کر پھر چلے گا, پھر گرے گا, پھر جلے گا, یہاں تک کہ گرتے پڑتے چلتے چلتے بھی آخر اس کو چلنا آ جائے گا. تو ایک بچے ہم سے زیادہ ہمت والا ہے کہ وہ چلنا سیکھ لیتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے. گر گیا ہے, کبھی کبھی چوٹ لگتی ہے, لیکن پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا ہے, ہمت کر کے کام لینا. تو فرمایا بالآخر اس کو چلنا آ جائے گا. لہذا ہمت کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ, آگے قدم بڑھاؤ. جب گر جاؤ تو کوئی پرواہ نہ کرو, پھر دوبارہ کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دو. پھر گر گئے, یعنی ایک مرتبہ کوئی عمل چھوٹ گیا, فرمایا پھر دوبارہ شروع کر دو. ایک مرتبہ کوئی گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لو, پھر اب نہیں کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں گرنا پھر چلنا شروع کرنا. گھبرا کر بیٹھ نہیں جانا, او ہو میرے سے تو ابھی ہوتا ہی نہیں ہے, اب میں کیا کروں. پھر چلنا شروع کر دو, پھر توبہ کر لو, پھر ہمت کر لو, پھر دو چار دن کے بعد پھر گر گئے, پھر چلو. کوئی عمل شروع کیا, کوئی مراقبہ شروع, پھر چھوٹ گیا, پھر شروع کر دو. کوئی نماز چھوٹ گئی, پھر شروع کر دو. تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ عمل چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بیٹھ مت جاؤ کہ اب تو ہوتا ہی نہیں میرے سے. نہیں, بیٹھنا نہیں ہے, پھر شروع کر دینا اور اطلاع دیتے رہو. پھر گر گئے, پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دو. آج دو مرتبہ گرے, کل کو ایک مرتبہ گروں گے. آج پورے گرے, کل کو آدھے گروں گے, ہے نا. رفتہ رفتہ چلنا آ جائے گا. بہرحال ہمت کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے, اور ہمت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوگا وہ انسان کی ہمت سے ہوگا. جی, ہمت سے ہوگا. اس لیے یہ ہے گرنا, کیا عمل چھوٹ جائے. بہت سارے کہ عمل چھوٹ جاتے, بولے ہم سے تو ہوتے. ارے نہیں, وہ جب تمہارا نفس تمہیں گراتا ہے تو تم بھی تو اس کو گراؤ. کہا نہیں, اب تو مجھے کرنا ہے. تو ایسے کرتے کرتے سال بھر ایک محنت کروں گے تو پھر چل پڑتے, پھر کم گرنا ہوگا. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے, یہ جو مشہور ہے کہ فلاں بزرگ ایک نظر ڈال دیتے تو زندگی بدل جاتی ہے, انقلاب آ جاتا ہے. جیسا کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں ویسے ہی آوارہ پھرتے رہتے تھے. ان کے والد کی ایک شیخ تھے, والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا آوارہ پھرتا رہتا ہے, شیخ کے پاس ملاقات اور اصلاح کرنے نہیں جاتا, اس کو چاہیے کہ شیخ کے پاس جا کر اصلاح کرائے. ایک دن شیخ ان کے گھر تشریف لائے. حافظ صاحب ویسے ہی پھر رہے تھے, باپ نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ. چونکہ شاعر تو تھے ہی, جب قریب آئے تو ایک شعر پڑھا. آرا کے خا کرا ب نظر کی میاں کنن, آیا بود کے گوشے چشمے بما کنن. یعنی وہ لوگ جو ایک نظر سے خاک کو کیمیا بنا دیتے, یعنی مٹی کو قیمتی بنا دیتے, سونا بنا دیتے. دراصل شیخ کو خطاب ہے کہ آپ تو ایک نظر میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں, کاش ایک نظر کا کنارہ ہم پر بھی ڈال دے. تو شیخ نے فوراً جواب دیا کہ نظر کر دم, نظر کر دم, نظر کر دم, میں نے نظر ڈال دی, میں نے نظر ڈال دی. بس اس نے شعر پڑھا اور انہوں نے نظر ڈال دی. بس اسی وقت سے حافظ کی دنیا بدل گئی اور وہ آوارہ گردی ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو صاحب مقامات بنا دیا. بہرحال پچھلے زمانے کی صوفیاء کرام کے یہاں اس قسم کے چند واقعات ملتے ہیں کہ شیخ نے ایک نظر ڈالی اور ایک نظر سے زندگی میں انقلاب آ گیا. لیکن یہ عام نہیں ہوتا ہے, تمہیں اسباق لینے پڑیں گے. یہ گاہے گاہے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مراد. کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو کسی کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں اور پھر مرید ہوتا ہے. پہلے مرید پھر مراد ہونا, اور پہلے مراد پھر مرید ہونا, یہ پھر الگ بحث ہے, آئے گی کبھی. وہ بھی مرید اور مراد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, اس کو کہتے ہیں اللہ نے چن لیا. نظر ڈال کر تصرف کرنے کی حقیقت, इस बारे में कई बातें समझने की है, सुन लो। पहली बात तो यह है कि नजर डालना तसर्रुफ है, और ये तसर्रुफ करना हर एक को नहीं आता। तसर्रुफ है ये, नजर डालना, ये तसर्रुफ करना हर एक को नहीं आता, और तसर्रुफ ना आना कोई ऐब की बात भी नहीं। यानी अगर किसी शेख और वली वलीउल्लाह की नजर में तसर्रुफ की कुव्वत न हो तो उसके अंदर कोई ऐब नहीं। अगर तसर्रुफ की कुव्वत हासिल हो जाए तो अल्लाह की नेमत है, और अगर हासिल न हो तो कोई ऐब नहीं। इस तरीके से होना, नहीं तसर्रुफ होता है जी। आजकल एक पीर साहब बड़े मशहूर हो रहे हैं, उनकी किताब में लिखा हुआ देखा कि जो पीर अपने मुरीदों को बैतुल्ला में नमाज न पढ़वा सके वो पीर बैत के लायक नहीं है। देखा, जो पीर अपने मुरीदों को बैतुल्ला में नमाज न पढ़वा सके वो पीर बैत के लायक नहीं। याद रखिए, ये गुमराही की फिक्र है। ये गुमराही की फिक्र है। यानी तसरुफ ऐसा नहीं करना है कि तुम यहां बैठे बैठे अपने अपने मुरीदों को बैतुल्ला में नमाज पढ़ा रहे हैं, ये कोई चीज नहीं है। ये सब गुमराही की फिक्र, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। तसरुफ के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तसरुफ का अमल फासिक और फाजिर को भी हासिल हो जाता है। क्योंकि ये तो वो तो इसको जैसे पहले हमारी वो दर्स में गया है ना, वो है ना, क्या जोज जोजो मुनक्का की तरह है। जोजो मुनक्का यानी अखरोट और किशमिश की तरह है। ये कोई असल नहीं है कि उसे समझ जाओ कि हाँ मैं अब बढ़ गए। ये तो ये हर एक को मिल जाता है, ये कैफियत है। ये कैफियत गैर मुस्लिम को भी मिल जाती है। फरमाया इसके लिए फासिक और फाजिर को भी हासिल हो जाता है, हत्ता के काफिर और गैर मुस्लिम को भी हासिल हो जाता है। मालूम हुआ कि हालत मुकर्रब बारगाहे खुदावंदी होने की अलामत नहीं, और न ही ये मुत्तकी होने की अलामत है, और न उसका न होना कोई ऐब है। इसको करामत भी बाजे लोग कह देते हैं। बाज औकात किसी को तसरुफ हासिल हो जाता है और बाज औकात नहीं होता। ये याद रखे, क्योंकि आजकल हमारा मिजाज है कि ऐसा पीर ढूंढो जो ऐसा हमें बतावे। अब जैसे उसने कहा कि अब पीर अपने मुरीदों को बैतुल्ला में न नमाज पढ़ा सके तो भी क्या, हर एक ढूंढने का बोला हमें तो ऐसा पीर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि बैतुल्ला में नमाज पढ़वा। तो उसका मतलब यह है कि इस्लाह नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ और है, ये सब गुमराही के रास्ते हैं, याद रखना। दीन के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए फरमाया ये न होना ऐब नहीं है, होना कोई कमाल की बात नहीं। कमाल तो ये है कि नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना। दूसरी बात यह है कि तसर्रुफ का हासिल, तसर्रुफ उसको तसर्रुफ कहते हैं ना, एकदम से इस तरीके से करना, किसी को क्या से क्या पहुंचा देना। ये तसर्रुफ का हासिल सिर्फ यह है कि जिस शख्स पर तसर्रुफ किया गया है, तसर्रुफ के नतीजे में उसकी तबीयत में जरा सा निशात पैदा हो जाता है, यानी थोड़ा मजा आ जाता है। हाँ, वही उसी के किस्म है ये हेपनाटिस की। हाँ, कि उसकी एक किस्म है। तो फरमाया उसके जरिए से थोड़ा सा एक इंसान को थोड़ा मजा आ जाता है, निशात पैदा हो जाता है। लेकिन ये निशात और ये मजा देर पा नहीं होता, बल्कि वक्त ही होता है। आगे काम उसको खुद ही करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि तसर्रुफ के नतीजे में सारी उम्र काम करता रहे। क्यों? कि तसर्रुफ जो होता है, एक मरतबा एक इंसान को पूरी गलत जिंदगी से नेकी की तरफ तो आ गया है, लेकिन अब नेकी पर चलना तो उसी को पड़ेगा। तो ये हो गया ना। तो कभी कभी ऐसा अल्लाह ताला किसी मशाइख से ऐसा करा देते हैं कि उसकी जिंदगी में एकदम से चेंजिंग आ गई। तो चेंजिंग तो आ गई, लेकिन आगे अमल किसको करना? अब नमाज तो उसी को पढ़ना है, अब सच तो उसी को बोलना है, अखलाक तो उसी को इख्तियार करना, अब हर चीज में थोड़ा तसरुफ चलेगा। तो ये होता है कि एकदम से जिंदगी को चेंज कराकर आगे उसी को चलना है। तो ये वक्ती चीज होती। अब अभी नमाज भी शेख पढ़ लेगा, ये थोड़ी होगा, ये तो नहीं होगा। तो आगे काम उसको खुद ही करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि तसर्रुफ के नतीजे में सारी उम्र काम करता रहे, यानी अब मेरा काम हो गया। नहीं, काम नहीं हुआ। ये तो उसको कहते हैं एक धक्का दे दिया, ज्यादा पावर से उसको धक्के से उसको बदल दिया जी। इस तसर्रुफ की मिसाल ऐसी है जैसे गाड़ी को धक्का लगाना। देखो इसमें आ गई, इस तसर्रुफ की मिसाल ऐसी है जैसे गाड़ी को धक्का लगाना। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसको धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश की जाती, तो इस धक्का लगाने के नतीजे में उस गाड़ी में चलने की थोड़ी सी सलाहियत पैदा हुई। लेकिन जब धक्के के जरिए स्टार्ट हो गई तो अब वो गाड़ी इंजन और पेट्रोल की ताकत से चलेगी, अब धक्के से नहीं चलेगी, अंदर की ताकत से चलेगी। लेकिन अगर इंजन ही खराब है, पेट्रोल ही नहीं है, तो फिर 1000 धक्के लगाओ गाड़ी नहीं चलेगी, बस धक्का लगाने से 2-4 कदम चलकर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर इंसान के अंदर सुलूक में और अल्लाह ताला के रास्ते में चलने की हिम्मत और ताकत है, तो किसी की नजर पड़ जाने से उसके अंदर चलने की सलाहियत पैदा हो गई और तबीयत के अंदर जरा सा एक निशाद और मजा पैदा हो गया, अब अगर अपने अंदर ताकत है तो उसके जरिए आगे चलेगा। लेकिन अगर अंदर ही ताकत नहीं तो 1000 नजर डालते रहो, 1000 तसर्रुफ करते रहो, कुछ नहीं होगा। हाँ, वक्ती तौर पर थोड़ा सा जज्बा पैदा होगा, फिर वो ठंडा पड़ जाएगा। अब समझ गए तसर्रुफ, इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी को करना, सब कुछ उसी को करना पड़ेगा। शेख कुछ नहीं, शेख तो धक्का दे देगा, इसलिए शेख कभी कभी दर्स देकर भी धक्का देता है, कभी तवज्जो देकर भी धक्का देता है, और कभी उसे नरमी से बात करके, कभी पास में बिठाकर, ये सब धक्के होते हैं, बाकी चलना पड़ेगा उसी को। जी, बहरहाल ये नजर न तो देर पा चीज है न दायमी है, ये न देर तक रहती है न हमेशा, न हर एक को हासिल होती है, न कोई ऐसी सिफत मदा है जिसका न होना आए हो, और अगर नजर से फायदा हो भी जाए तो वक्ती होगा। आखिर में काम अपनी हिम्मत ही से करना होगा, इंजन अपना मजबूत करना होगा, उस इंजन से ही गाड़ी चलेगी, धक्के से नहीं चलेगी। लिहाजा असल काम यह है कि अपनी हिम्मत को ताजा करो। तो शेख की दिल हमारा इंजन है ना, वो दिल मुर्दा हो चुका है, जो नेकी की तरफ आ ही नहीं रहा है, तो कभी कभी तवज्जो दी जाती है तो दिल को एक धक्का लगता है और स्टार्ट हो जाता है, उसको कहते हैं दिल जारी हो गया, अब आगे तो उसी को करना है ना, अब नेकी पर चलेगा कौन, उसको तो दिल को स्टार्ट कर देता है कि नेकी का शौक पैदा हो गया, अब उसी को चलना है। इस इंजन से ही गाड़ी चलेगी, धक्के से नहीं चलेगी। लिहाजा असल काम यह है कि अपनी हिम्मत को ताजा करो। इसीलिए हजरत वाला फरमाते हैं कि आमाल की इसलाह और बातिन की इसलाह का तरीका यह है कि नफ्स के जज्बात की मुखालिफत की जाए, नफ्स के जज्बात की मुखालिफत की जाए और उसको मशक्कत का आदि बनाया जाए। उसको जितना मशक्कत का आदि बनाओगे वो बनता ही चला जाएगा, और उसके नतीजे में तुम्हारा काम बनता चला जाएगा इंशा अल्लाह ताला। फिर उससे जाहिर आमाल भी दुरुस्त होते चले जाएंगे और बातिन भी दुरुस्त होता चला जाएगा, जाहिर के भी और बातिन के भी। आगे फरमाया हदीस में है कि जब तुम साइल को 3 बार उजर समझाकर जवाब दे दो, ये अभी अनफास ईसा की इबारत है, फरमाया तुम साहिल को 3 बार उजर समझाकर जवाब दे दो और वो फिर भी न जाए, वो फिर भी न जाए, लपेट कर जम ही जाए जिससे ईजा होने लगे, तो फिर उसके झिड़क देने में कुछ डर नहीं। ये भी सबका सवाल था, आज सवाल मिल जाएगा। उससे ये मालूम हुआ कि हुस्ने अखलाक की भी एक हद है और बंदा उसका मुकल्लफ नहीं कि उस हद से आगे इजा का तहम्मुल करे। देखो अब इसकी तफसील समझो, एक तरफ कुरान करीम का तो इरशाद है कि वह अम्मसाइल फला तनहर, यानी जो साइल तुमसे मांग रहा हो उसको मत झिड़को और डांट डपट कर मत भगाओ, और अगर मना करना है तो नरमी से मना कर दो कि बाबा माफ करो, इस वक्त देने को नहीं है या कोई और उजर है तो बता दो, झिड़कना नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक मर्तबा समझा दिया कि बाबा इस वक्त नहीं है माफ करना, फिर भी वो मांग रहा है, फिर समझा दिया कि बाबा माफ करो फिर भी वो परेशान कर रहा है, फिर तीसरी मर्तबा समझा दिया, 3 मर्तबा समझाने के बाद अब तुम नरमी करने के मुकल्लफ नहीं हो, अब अगर तुम उसको झिड़क दो कि भाग यहां से, ये झिड़कना तुम्हारे लिए जायज है और झिड़कना अम्मसाइल फला तनहर में दाखिल नहीं होगा जैसा कि हदीस में आया। अल्लाह, समझ में आ गई बात? वरना आज तो क्या है, वो वाकईतन बहुत से मांगने वाले इतना इसरार करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सवाल तो मेरा भी था, मुझे भी इस बात को मिला कि अब इनको क्या जवाब दिया जाए। हजरत वाला फरमाते, इससे पता चला कि लोगों के साथ हुस्ने अखलाक की भी एक हद है, हुस्ने अखलाक की भी एक हद है। ये नहीं कि हुस्ने अखलाक का हुक्म इंसान को गैर मुतनाही तकलीफ पहुंचाने के लिए दिया गया है। हुस्ने अखलाक की हुदूद है, यहां तक का तुम अखलाक बरतो, उसके बाद तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो फरमाया, उसको नरमी से बताए अखलाक है, लेकिन जब वहां से इसरार है तो अब तकलीफ होगी हमें। तो फरमाया, उसको झिड़क कर भगाओ, तो अब वो भागेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि इनको जितना हम कहेंगे तो ये तंग होकर हमें कुछ ना कुछ देगा। तो ये मसला तो उनको पता है, फकीरों को ये इनका मसला ये मालूम नहीं है, लेकिन आज सबको पता चल गया है, अब सब फकीर भागेंगे। मसला मालूम नहीं था ना, और उनको पता था कि ये लोग हमको झिड़केंगे नहीं, हमको देंगे ही, हम जब चिपक कर रहेंगे तो। लेकिन आज हमें भी पता चल गया है। तो फरमाया, दूसरा शख्स चाहे कितनी तकलीफ पहुंचाए, फरमाया ये नहीं कि हुस्ने अखलाक का हुक्म इंसान को गैर मुतनाही तकलीफ पहुंचाने के लिए दिया गया, यानी तकलीफ पहुंचाने के लिए दिया गया, ऐसा नहीं। दूसरा शख्स चाहे कितनी तकलीफ पहुंचाए, मगर ये बर्दाश्त ही करे और हुस्ने अखलाक ही का मुजाहरा करे, ऐसा नहीं है। बल्कि एक हद के बाद जाहिर अबदन अखलाकी का मुजाहरा करना पड़े, जाहिरन जाहिरन बद अखलाकी का मुजाहरा करना पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जाहिरन बद अखलाकी का मुजाहरा करना पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर चीज के अल्लाह ताला ने एक हद रखी है, उसी हद तक वो महमूद और अच्छी है और मतलूब भी है, उस हद से आगे का इंसान मुकल्लफ नहीं है। इसलिए किसी को समझाते समझाते भी नहीं समझ रहा है, तो फरमाया अब उसको डांट के समझाओ, इसलिए कि पहला जो तुम्हारा तरीका था समझा दिया, शायद अब समझ जाए। हर चीज में आ गई अखलाक, हर चीज में आ गई। एक आदमी तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है, मांगने की नहीं, किसी और तरह से तकलीफ पहुंचा, हम उनको समझा रहे भाई देखो ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अब तुम्हें हद, अब तुम अपनी अपने डांट सकते हो, अब ये बद अखलाकी नहीं होगी। फरमाया तुम अभी उसकी तकलीफ, अब हो सकता है वो इतना डांटने के बाद हो सकता है वो बंद हो जाए, हमें तकलीफ देना बंद कर दे। तो ये है चीज। अगरचे इंसान को हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि वो गुस्सा न करे, हमारे हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वैसे तो बेमहल गुस्सा करना गुनाह है, और बरमहल गुस्सा करना जायज है। बरमहल यानी जहां जरूरत है वहां पर गुस्सा करना जायज है, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर गुस्सा करना गुनाह है। लेकिन बेमहल गुस्सा करने से अपने आप को बचाने के लिए उसकी मशक करनी पड़ती है कि बरमहल भी गुस्सा न करे। तो अब उसको बेमहल पर गुस्सा न होने के लिए उसको मशक करनी पड़ती है, तो उस मशक के लिए उसको जहां पर गुस्सा करने की इजाजत है वहां पर भी नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं मुब्तदी, इब्तिदा में, स्टार्ट में उसको गुस्सा ही नहीं करना है, हर जगह पर बर्दाश्त करे, जवाब न दे। तो इसलिए कह रहे हैं कि बरमहल भी गुस्सा न करे, और मुब्तदी को चाहिए, मुब्तदी जो अभी शुरू किया है उसको चाहिए कि पहले तो गुस्सा बिल्कुल ही छोड़ दे, न बरहक गुस्सा करे न नाहक गुस्सा करे। फिर जब गुस्सा काबू में आ जाए तो बरहक गुस्सा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब कंट्रोल हो गया है। और यही हुआ था मक्की जिंदगी में, क्या था मक्की जिंदगी के अंदर, किसी को इजाजत नहीं थी बदला दे लेने की, मार खाते जाओ और अपने आप को कंट्रोल करते जाओ। तो देखा, इब्तिदा थी, उनकी तरबियत तो हो चुकी थी, लेकिन और आगे दर्जात बढ़ाना था। और फिर वहां आने के बाद, मदीना में आने के बाद क्या कर दिया, हिजरत के बाद फरमाया अब जहां जरूरत है वहां गुस्सा लगाओ और बेमहल गुस्सा को कंट्रोल करो, हो गया। तो वो था। तो अब देखना है कि किस हद तक इंसान हुस्न अखलाक से पेश आए। ये वो मकाम है जहां इंसान धोखा खा जाता है, ये वो मकाम है जहां इंसान धोखा खा जाता है। जी, यही वो चीज है जो बुजुर्गों की सोहबत से हासिल की जाती है कि किस जगह आदमी गुस्सा करे और किस जगह गुस्सा न करे। ये कोई रियाजी का फार्मूला नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है जो दो और दो चार करके समझा दिया जाए, यानी मैथ्स का कोई, कि फुला जगह पर रुक जाओ और फुला जगह पर गुस्सा कर लो, बल्कि बुजुर्गों की सोहबत के नतीजे में ये जौक और मलका और ये इस्तेदाद पैदा हो जाती है। फिर इस मलका के जरिए इंसान फैसला करता है कि यहां पर गुस्सा करना सही है और यहां पर गुस्सा करना गलत है, और ये मलका, ये अंदर की ताकत की, यानी साहिब मलका की सोहबत के बगैर, यानी ये अंदर ताकत और ये पहचानने का तरीका उसको आएगा जो पहचान गया है गुस्से को, उसकी सोहबत में बैठे बगैर, यानी शेख की सोहबत में बैठे बगैर नहीं आ सकता, सोहबत के बगैर हासिल हो ही नहीं सकता। साहिबे कमाल को देखिए कि वो किस तरह अमल कर रहा है, उसको देखने से अपने अंदर भी वो मलका और वो ताकत रफ्ता रफ्ता पैदा हो जाती है। फरमाया क्या, अब ये असल किताब की इबारत है, हदीस में है कि जब तुम सुनो कि अपनी जगह से पहाड़ टल गया तो तस्दीक कर लो, अपनी जगह से पहाड़ टल गया तो तस्दीक कर लो, और जब तुम किसी शख्स की निस्बत सुनो कि अपने अखलाक से हट गया तो तस्दीक मत करो। उससे मालूम हुआ कि रियाजत से, यानी वो मुजाहदा से, अखलाके जब जिबिलिया, यानी जो तबीयत है, जायल नहीं होती, हाँ मुजमहिल हो जाती है। फरमाया अगर पहाड़ अपनी जगह से तो टल सकता है, पहाड़ उस जगह से खत्म हो गया, लेकिन किसी को किसी की बद अखलाकी, यानी अखलाक से हट गया, खत्म हो गई, फरमा ये नहीं हो सकता। ये मशहूर हदीस है कि अगर कोई तुमसे कहे कि फुला पहाड़ अपनी जगह से हटकर फुला जगह पर चला गया तो उसकी तस्दीक करने की गुंजाइश है, क्योंकि उसका इम्कान है। लेकिन अगर कोई शख्स से कहे कि फुला शख्स की आदत और फितरत अखलाक से हट गया तो उसकी तस्दीक मत करो। मतलब यह है कि पहाड़ तो अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन अखलाक और फितरी और उसकी जिबिल्ली, उसकी आदत अपनी जगह से हट नहीं सकती। जैसा कि फारसी की मसल मशहूर है कि जमी जुम्बद जमा जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद से मुराद अखलाके जबीला है वो अपनी जगह से नहीं टल सकती, यानी जमीन टल सकती है, जमाना बदल सकता है, लेकिन गुल मोहम्मद नहीं बदल सकता, यानी 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 अखलाक। इस हदीस को नकल करके हजरत वाला ये नतीजा निकालते हैं कि इससे मालूम हुआ कि रियाजत से अखलाक की जिबिलिया जायल नहीं होती, जिबिलिया यानी अंदर के जो उसकी आदतें हैं, हाँ मुजमहिल हो जाते हैं। मतलब यह है कि हदीस में नफी इस बात की गई है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि इसका गुस्सा खत्म हो गया तो उसकी तस्दीक मत करो, क्योंकि गुस्सा खत्म नहीं होता, अलबत्ता रियाजत मुजाहदा और सोहबत के नतीजे में गुस्सा मुजमहिल हो जाता है। अब हर जगह गुस्सा नहीं आता बल्कि बरमहल गुस्सा आता है, और हद से तजावुज नहीं करता लेकिन वो गुस्सा बिल्कुल या खत्म नहीं हुआ। तो दर हकीकत इस हदीस को यहां लाने का मंशा उन लोगों की तर्दीद है जो इस हदीस को बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि साहब पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है लेकिन अखलाक इंसान के नहीं बदल सकते। ये सुनकर लोग इस्लाह से मायूस हो जाते, यह हदीस सुनकर लोग इस्लाह से मायूस हो जाते, जब मेरे अखलाक नहीं बदल सकते तो इस्लाह कराने से क्या फायदा, बस जैसे अखलाक है उनको वैसे ही रहने दिया जाए। तो हजरत ने इस हदीस का सही मतलब वाजे फरमाया कि हदीस का मतलब यह है कि जिबिल्ली अखलाक नहीं बदल सकते, फितरत जो है वो नहीं बदल सकती, अलबत्ता कमजोर पड़ जाती है, और कमजोर पड़ जाने के नतीजे में बुराई पर आमदा करना खत्म हो जाता है। लिहाजा यह हदीस इस बात पर दलालत नहीं करती कि इंसान अपने अखलाक की इसलाह की कोशिश न करे। बस ये यहां तक ही रखे, इंशाल्लाह थोड़ी देर मुराकबा कर ले। आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले, और ये तसव्वुर करे एक अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।